अर्पिता ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ मासा, वो हमें भाभी सा और भाई सा की शादी के कपड़ों और सामान की शॉपिंग के बारे में आपसे बात करनी थी। हम चाहते हैं कि भाभी सा अपनी शादी में अपनी पसंद के कपड़े और ज्वेलरी पहने, क्योंकि हमने जहाँ तक एंगेजमेंट में देखा और ऑब्जर्व किया, हमें यही लगा कि शायद भाभी सा उस हैवी लहंगे में बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं थी। इसलिए अगर आप कहें तो हम भाभी सा को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाएं और शादी के लिए उन्हें उनकी पसंद का जोड़ा और बाकी कपड़े और जेवर सामान दिला दें तो कैसा रहेगा? अर्पिता को फिलहाल जो भी सूझा उसने अपनी माँ के सामने बोल दिया, लेकिन ये बात सुनकर उसकी माँ एकदम सीरियस होकर अर्पिता की तरफ देखने लगी। मासा अर्पिता की बात सुनकर बोली, वैसे हमें नहीं लगता अर्पिता हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत है। अर्पिता ने बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहा, नहीं मासा, हमें ऐसा करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, हम इतनी जल्दीबाजी में शादी कर रहे हैं तो भाभीसा के मन में भी अपनी शादी को लेकर कुछ न कुछ अरमान तो होंगे ही ना। हम नहीं चाहते कि वे अपनी शादी में अपनी मनपसंद का लहंगा भी ना पहने। अर्पिता की ये बात सुनकर मासा कुछ सोचने लगी, फिर उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद कहा, ठीक है, हमें लगता है आप शायद ठीक कह रही हैं। अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है मासा, फिर हम अभी ड्राइवर के साथ सूर्यवंशी हवेली चलते हैं और वहां से भाभीसा को लेकर सीधे शॉपिंग पर चलेंगे। मासा ने अपना फोन उठाते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ, हम सुहासिनी जी को इस बारे में बता देते हैं तो वे इप्सिता को रेडी करवा देंगी। अर्पिता ने मुस्कुरा कर कहा, जी ठीक है मासा। इतना बोलकर अर्पिता सीधे अभिमन्यु के पास आकर बोली, चलिए भाईसा, हो गया आपका काम, मासा ने हमें जाने की परमिशन दे दी, हम भाभीसा के घर चल रहे हैं और उन्हें लेकर ही हम निकलेंगे, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभिमन्यु ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन तुमने मासा को कैसे कन्विंस किया? अर्पिता ने काफी खुश होते हुए कहा, हमने आपकी और भाभीसा की शादी की ड्रेस का बहाना बनाया और अब हम भाभीसा के साथ ही शॉपिंग भी कर लेंगे और आप उनसे बात भी कर लीजिएगा, हम दोनों का ही काम हो जाएगा। अभिमन्यु ने अर्पिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चलो चलते हैं। अभिमन्यु सीधा अर्पिता के साथ महल से बाहर निकला और वो 7-सीटर कार में बैठ गया। वे लोग महल से निकलकर सीधे सूर्यवंशी हवेली की तरफ चल दिए। वहीं रानीसा ने इप्सिता की माँ के पास फोन कर दिया था। उन्होंने ये बात भी तुरंत मान ली और वे सीधे इप्सिता के कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा इप्सिता नंदिनी से भी बात नहीं कर रही थी, वो काफी ज्यादा अपसेट थी। नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता की माँ को रूम के अंदर आते देखा वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। इप्सिता ने अपनी माँ को जैसे ही रूम के अंदर आते हुए देखा उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि वो कल रात से ही अपने माँ बाप दोनों से नाराज थी। लेकिन इप्सिता की माँ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने इप्सिता के सामने आकर खड़े होते हुए कहा, इप्सिता रेडी हो जाइए, थोड़ी ही देर में आपकी ननद अर्पिता यहाँ पहुँच रही हैं और आपको उनके साथ अपनी शादी के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए जाना है। रानीसा चाहती हैं कि आप अपनी शादी में अपनी पसंद के कपड़े पहने। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने बेमन से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, हमें कहीं नहीं जाना माँ, आप उनसे बोल दीजिए कि वे अपनी पसंद के ही कपड़े ले आएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कैसे कपड़े लाता है शादी के लिए, जब शादी हमारी मर्जी से नहीं हो रही है तो कपड़े हम अपनी पसंद के पहन कर क्या करेंगे। इप्सिता की ऐसी बात सुनकर इप्सिता की माँ उसे घूरते हुए बोली, ये क्या बात हुई भला, आप हमसे इस तरह कैसे बात कर रही हैं इप्सिता, मत भूलिए हम आपकी माँ हैं और आपके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अर्पिता के साथ शॉपिंग पर जाना ही होगा, इसलिए बेहतर होगा कि उनके आने से पहले आप तैयार हो जाएं, वरना आप जानती हैं हमें। इप्सिता ने चिल्लाते हुए कहा, क्या करेंगी आप, इसमें भी हमारे साथ जबरदस्ती करेंगी क्या, पहले ही आप हमारी किसी भी बात को मानना जरूरी नहीं समझती और आपकी सारी बातें तो हम मान रहे थे, लेकिन आपने शादी के लिए एक महीने का भी टाइम नहीं लिया, क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। इप्सिता की माँ ने उसे घूरते हुए बोला, इप्सिता हम इस बारे में कल रात में पहले ही बात कर चुके हैं और हमने तुम्हें अपना फैसला पहले ही बता दिया था, तो आप अब इस बारे में बात करके हमारा और अपना वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से उठिए और रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी ननद किसी भी टाइम यहाँ पहुँचती ही होगी और हम नहीं चाहते कि आप उन्हें वेट कराएं। इप्सिता कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी नंदिनी ने कहा, आंटी आप चलिए मैं इप्सिता को रेडी कर दूंगी। इप्सिता की माँ ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, तुम भी रेडी हो जाना और इप्सिता के साथ तुम भी चली जाना, क्योंकि हमें इप्सिता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पता नहीं ये अपनी ननद से भी कहीं इसी तरह का बिहेव न कर दे। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है आंटी डोंट वरी मैं इप्सिता को समझा दूंगी। इप्सिता ने उसे घूरते हुए देखा और चुपचाप वहाँ से चली गई। नंदिनी ने इप्सिता को समझाते हुए कहा, बेकार की जिद मत करो इप्सिता, वैसे भी तुम्हारी ननद तो कितनी अच्छी है, वे बेचारी तुम्हें शॉपिंग के लिए अपने साथ ले जाने आ रही हैं और तुम इस तरह का बिहेव करोगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत की बात भी तो है ना, इसलिए प्लीज जिद मत करो और रेडी हो जाओ, वैसे भी तुम्हारे भाई ने कहा है ना कि वे कुछ ना कुछ बात करेंगे, इसलिए चल उठो जल्दी से रेडी हो जाओ। नंदिनी ने किसी तरह से लिप्शिता को समझाया और उसे रेडी करने लगी और खुद भी जल्दी से तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद अर्पिता सीधे सूर्यवंशी हवेली पहुंची। अर्पिता को वहां आते देखकर इप्सिता की माँ जल्दी से अर्पिता के पास आकर बोली, अर्पिता बेटा आइए बैठिए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन मैं बैठूंगी नहीं क्योंकि हमें शॉपिंग के लिए निकलना है और वहाँ काफी टाइम लगेगा। आप प्लीज भाभी सा को बुलाइए, इप्सिता ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली। एक्चुअली इप्सिता रेडी हो रही है, इसलिए आप बस दो मिनट यहीं बैठिए, हम उसे बुलाकर लाते हैं। इतना बोलकर सुहासिनी जी ने कुछ ज्यादा ही मुस्कुराकर सामने खड़ी अर्पिता की तरफ देखा और वहां से इप्सिता के कमरे की तरफ जाने लगी। अर्पिता वहां पर ही खड़ी होकर पूरे घर में इधर उधर देखने लगी। क्रमशः